दिन भर 8 जनवरी दिन रविवार, मैं हूं संदीप सोनी। समाजवादी पार्टी में घमासान जारी, अखिलेश के उलट मुलायम ने खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया। भारत की बढ़ती आबादी के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या कहते हैं आंकड़े?
ये 40 और 4 जो साक्षी महाराज ने कहा, आंकड़े देखने तो चाहिए इन्हें बोलने से पहले। जहां महिलाओं को चॉइस नहीं है अपनी शादी कब होगी उनकी और कब बच्चे पैदा करेंगे।
विवेचना में आज याद करेंगे जाने माने लेखक मोहन राकेश को।
वो कहते थे कि देखो अनीता, मैं आज तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूँ, पहले नंबर पे तो मेरा लेखन है, दूसरे नंबर पे मेरे दोस्त हैं, तीसरे नंबर पे तुम हो।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। समाजवादी पार्टी में जारी तकरार के बीच आज मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुलायम सिंह ने रामगोपाल यादव की ओर से बीते दिनों लखनऊ में बुलाए गए राष्ट्रीय अधिवेशन को फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि रामगोपाल को पार्टी से निकाल दिया गया था, ऐसे में उन्हें अधिवेशन बुलाने का हक नहीं था। इस अधिवेशन में ही अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया गया था। फिलहाल दोनों ही गुट चुनाव आयोग के सामने अपने दावे पेश कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीयों के सपने सरकार के लिए संकल्प की तरह हैं। उन्होंने कहा कि इन सपनों को पूरा करने के लिए अगर व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत होगी तो उसे भी किया जाएगा। उन्होंने नोटबंदी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटे विरोधियों पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
यह दुर्भाग्य है कि ब्लैक मनी के कुछ राजनीतिक पुजारी हमारे प्रयासों को जनता के विरोधी दर्शाते हैं। करप्शन और काले धन को समाप्त करने में भारत सरकार की नीतियों का जो समर्थन प्रवासी भारतीयों ने किया है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका साधुवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं।
ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइल की पुलिस के मुताबिक यरूशलम में एक व्यक्ति ने सैनिकों पर ट्रक चढ़ा दिया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष हैं। इस हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो गई। पुलिस इस घटना को चरमपंथी कार्रवाई के तौर पर देख रही है। भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को लेकर इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है। इसराइल के एक अखबार ने दावा किया है कि पुलिस के पास नेतन्याहू की बातचीत का एक टेप है। अखबार का दावा है कि नेतन्याहू एक अनाम व्यापारी से कथित तौर पर परस्पर लाभ की बारे में बात कर रहे हैं। अखबार के दावों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। इसराइल के प्रधानमंत्री आरोपों से इनकार कर चुके हैं। बीते हफ्ते पुलिस ने उनसे 2 बार पूछताछ की थी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेजा मे ने उन अनुमानों को खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका नेटो को लेकर सभी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं करेगा। उन्होंने स्काई न्यूज से कहा कि ट्रंप के साथ बातचीत में उन्हें ऐसे कोई संकेत नहीं मिले। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन अमेरिका के साथ खास रिश्ते बहाल करने की आशा लगाए हुए है। ये रिश्ते वैश्विक सुधार के लिए अहम है। उन्होंने कहा, कई बार लोगों को लगता है कि नेटो को लेकर अमेरिका का रुख बदल सकता है। मेरी जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि अमेरिका नेटो को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगा जैसे कि हम हैं। ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरेजा मे के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक से मिली रिपोर्टों के मुताबिक राजधानी बगदाद के सब्जी बाजार में हुए धमाके में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। इराक की सरकारी सेना ने जब से मोसूल में अभियान शुरू किया है तब से बगदाद में इस्लामिक स्टेट के हमले बढ़ गए हैं। आइवरी कोस्ट में विद्रोह करने वाले सैनिक अपनी बैरिकों में लौट गए हैं। 2 दिन पहले सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति आला सन वाटरा ने कहा है कि उनका सैनिकों के साथ समझौता हो गया है। बीबीसी समाचार। बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा। दिन भर में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं। दिन भर का सीधा प्रसारण। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक चली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो महाभारत हो रहा है वो कब तक जारी रहेगा शायद ही कोई बता सके। महाभारत की पूरी लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ी गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की लड़ाई लखनऊ और दिल्ली दो मैदानों में लड़ी जा रही है। इस महाभारत की ताज़ा झलक आज शाम दिल्ली में तब नजर आई जब समाजवादी पार्टी के बुजुर्ग नेता मुलायम सिंह यादव ने संवाददाताओं को संबोधित किया। लखनऊ के मैदान का भी जायजा लेंगे, लेकिन पहले बात दिल्ली के मैदान की। क्या कहा मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली में? आज मेरे सहयोगी प्रभात पांडे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए थे, स्टूडियो में मौजूद हैं। जी प्रभात।
जी संदीप, पिछले दिनों मीडिया में कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि अखिलेश सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच सुलह के आसार बढ़ रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली में जब पत्रकारों से खचाखच भरे एक संवाददाता सम्मेलन में मुलायम सिंह यादव ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने कुछ ये कहा।
मैंने आपको
जी संदीप, शायद समझ में नहीं आया होगा, एक तो पत्रकारों का इतना शोर था, ऊपर से मुलायम सिंह यादव बोल रहे थे, तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव ये कह रहे थे कि मैं ही समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा सभी चर्चाएँ बेबुनियाद हैं। इसके अलावा मुलायम ने ये भी कहा कि राम गोपाल यादव को पहले ही पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था, इसलिए निष्कासित आदमी को पार्टी का अधिवेशन बुलाने का कोई हक नहीं है, उन्होंने जो भी अधिवेशन बुलाया वो फर्जी है। पत्रकार उसके अलावा उनसे बहुत सारे सवाल पूछते रहे, लेकिन मुलायम सिंह यादव एक ही बात कहते रहे कि मैं इसके अलावा अभी कोई बात नहीं करूंगा। जी संदीप,
ये तो हुई बात दिल्ली की। समाजवादी पार्टी का दूसरा मोर्चा लखनऊ में खुला हुआ है। समीर आत्मज मिश्र लखनऊ से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। समीर, दिल्ली से पहले लखनऊ में आज कौन से तीर चले हैं?
जी, जैसा कि आपने अभी प्रभात ने बताया कि वहाँ दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुलायम सिंह यादव ने, और उससे पहले निकलने से पहले लखनऊ में वो अपने पार्टी दफ्तर आए। इधर भी जब से ये विवाद चल रहा था, मुलायम सिंह यादव शायद पहली बार दफ्तर आए। यहाँ से उनको कुछ बताया गया कि कागज समेटने थे जो कल वो चुनाव आयोग में सौंपने वाले हैं। यहाँ से उन्होंने उन कागजों को लिया और इस तैयारी के साथ गए और ऐसा आभास देकर के गए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं दिल्ली में, वहाँ वो यही बात कहेंगे कि मैं समाजवादी पार्टी, जो असली समाजवादी पार्टी जो है वो उन्हीं की है, यानी मुलायम सिंह यादव की ही है। और अखिलेश यादव, जिस तरीके से उन्होंने कहा जाए कि राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव ने मिल करके उनको सत्ता से, उनकी पार्टी से बेदखल किया है, वो ठीक नहीं है, गलत है, तो वही चीज़ मुलायम सिंह यादव ने वहाँ भी कही। अब लखनऊ में जो कुछ घमासान हो रहा है, जैसा आपने शुरू में कहा कि महाभारत चल रहा है, और दिल्ली में भी जो कुछ हुआ, अब उसका निष्कर्ष कुछ हद तक इनके बीच में तो नहीं निकल पाया है, लेकिन काफी कुछ निष्कर्ष इसका कल चुनाव आयोग शायद निकाल दे, और चुनाव आयोग जो भी फैसला देता है उसके बाद ये पता लगेगा कि अब दोनों के रास्ते किधर जा रहे हैं, अखिलेश यादव ग्रुप के और मुलायम सिंह यादव ग्रुप के।
समाजवादी पार्टी में घमासान जारी। अखिलेश के उलट मुलायम ने खुद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया। ये थे समीर आत्मज मिश्र लखनऊ से। और जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं जिनका नाम है साक्षी महाराज, जो अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरते रहे हैं। ऐसे ही एक विवादित बयान की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल साक्षी महाराज को लगता है कि भारत में जनसंख्या से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके लिए एक वर्ग विशेष जिम्मेदार है। मैंने अब से कुछ देर पहले पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की निदेशक पूनम मुटरेजा से बात की और जानना चाहा कि आबादी बढ़ाने के मामले में आंकड़े क्या कहते हैं, सच क्या है, कौन ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, हिंदू या मुसलमान?
देखिए, आंकड़े तो सीधे सीधे बता रहे हैं कि मुस्लिम और हिंदू ग्रोथ रेट ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। जहाँ गरीबी ज्यादा है और जहाँ पे इनकम कम है और जहाँ महिलाओं को सही इक्वालिटी बिल्कुल नहीं मिलती है, चॉइस नहीं है अपनी शादी कब होगी उनकी और कब बच्चे पैदा करेंगे, वहाँ पे
चाहे यूपी में हो, हिंदू मुसलमान दोनों का ग्रोथ रेट एक ही है। आप केरला में देखिए, मुस्लिम ग्रोथ रेट माइनस है, हिंदू ग्रोथ रेट भी माइनस है, क्योंकि वहां पे एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। तमिलनाडु में भी यही है और अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में भी यही था। दूसरा सवाल मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि आंकड़े देखे बिना हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे देश में गलत गलत सोच जो है वो आंकड़े देखे बिना है, कोई एविडेंस के ऊपर नहीं है ये हिंदू मुस्लिम ग्रोथ रेट के भी मुस्लिम ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। आंकड़े आपको बता रहे हैं, जो पिछले डेकेड का सेंसस आया था ना 2011 का, मुस्लिम ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा कम हुआ पिछले 10 साल में। और अगर आप हमारी नेबरिंग कंट्रीज में भी देखिए, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, वहाँ की जो फर्टिलिटी रेट है, वहाँ पे तो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं और इंडोनेशिया में हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, वहाँ फैमिली प्लानिंग के साधन भी दिए जा रहे हैं, महिलाओं को इनकम अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं और लिटरेसी रेट्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत शार्प डिक्लाइन है फर्टिलिटी की अमंग्स मुस्लिम्स। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम, और कहीं नहीं देखा है ये 40 और 4 जो साक्षी महाराज ने कहा, आंकड़े देखने तो चाहिए इन्हें बोलने से पहले।
ये थी पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की निदेशक पूनम मुटरेजा। आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन के लेखक के चारों ओर एक खास किस्म की रहस्यात्मकता रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर कहानीकार और नाटककार मोहन राकेश की, जिन्हें राजेंद्र यादव और कमलेश्वर के साथ नई कहानी का स्तंभ माना जाता था। मोहन राकेश के एक जीवनीकार ने उनके बारे में कहा था कि वो फर्श पर गिरे पारे की एक बूंद की तरह हैं, जो कांपते और टुकड़ों में बंटते हुए भी एक तरह की स्थिरता लेने की कोशिश कर रहा है। आज मोहन राकेश की 92वीं जयंती है। इस मौके पर विवेचना में उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल।
मैं समझता हूँ लेखक की भूमिका समाज में नहीं, मतलब आज के समाज में नहीं, कल के समाज में होती है, क्योंकि लेखक समाज का अनुगामी नहीं है, वह समाज में जो कुछ घटित होता है उस सब का ही लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं करता। समाज को लेकर, उसकी परिस्थितियों को लेकर उसे जो असंतोष होता है उसको व्यक्त करता है, और बहुत बार इस तरह से वह आने वाले कल का अग्रगामी होता है।
ये है आवाज अंधेरे बंद कमरे, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन जैसी कालजयी रचनाओं के लेखक मोहन राकेश की, जिन्हें कमलेश्वर और राजेंद्र यादव के साथ नई कहानी का त्रिकोण कहा जाता था। उनके सबसे करीबी दोस्त कमलेश्वर ने उनके बारे में लिखा था, मेरे दोस्त राकेश ने एक अव्यवस्थित जिंदगी जी थी, लेकिन उस अव्यवस्थित जिंदगी के अंदर भी एक गजब का अनुशासन छिपा था, एक रचनात्मक आत्मा के दिमाग का अनुशासन। ये जरूर है कि स्वभाव से मोहन राकेश बहुत फक्कर थे। जब वो अपनी पहली शादी के लिए इलाहाबाद पहुंचे थे तो उनके साथ कोई बारात नहीं थी, लगभग यही उन्होंने दूसरी शादी के वक्त भी किया, न किसी को खबर की और न ही किसी को बुलाया, दोनों ही शादियां नहीं चली। फिर उनकी मुलाकात अनीता औलक से हुई। दिलचस्प बात यह थी कि अनीता की मां चंद्रा मोहन राकेश की मुरीद थी। अनीता बताती हैं,
मेरी मां को बहुत पसंद थे राकेश जी, वो उनको खत लिखा करती थी, लेकिन एक ओम प्रकाश जी थे जिन्होंने राकेश जी को कहा था कि नहीं, ये चंद्रा जी नहीं, ये चंद्रा जी उनकी मां लिख रही हैं उनकी बेटी के नाम से। राकेश जी को पहले से ही पता था, क्योंकि ओम जी ने बताया था कि ये अनीता राकेश तो मैं चिट्ठी नहीं लिख रही, उसकी माँ लिख रही है उसके नाम से। सारिका से जब उन्होंने त्यागपत्र दिया तो मेरी माँ ने कहा, आपका दूसरा डाइवोर्स हो गया है, आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आप हमारे पास आइए और रहिए। तब हम ग्वालियर में रहते थे, वो ग्वालियर में आए, मैं उनसे उससे पहले भी मिल चुकी थी, ये तीसरी बार मिली थी। पहली बार मिली थी जब उनके दूसरी शादी हुई थी, उसके बाद मैं उनको वेंगल्स में मिली 2 बार, तीसरी बार मिली ग्वालियर में, तब तक मैं बड़ी हो गई थी। मैं 5 साल की थी जब मैंने राकेश जी का नाम सुना था, मुझे ये नहीं पता था कि ये आदमी एक दिन मेरे सामने खड़ा होगा और मुझसे कहेगा कि मेरे साथ भाग चलो, मैं भाग गई।
उस जमाने में औलख परिवार ग्वालियर में रहा करता था, मोहन राकेश मुंबई से दिल्ली जाते हुए बीच में ग्वालियर में रुके। शाम को सब लोग दिल एक मंदिर फिल्म देखने गए। मोहन राकेश और अनीता अगल बगल बैठे फिल्म देख रहे थे, तभी उनका रुमाल जमीन पर जा गिरा था।
वो रुमाल नीचे गिर गया था फिल्म हॉल में, तो वो रुमाल उठाने के लिए मेरे हाथ उनके पैरों के साथ लग गए। हम बोले तो कुछ भी नहीं, ये भी नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। जानते वो भी थे मन में और मैं भी, लेकिन हम दोनों कभी एक दूसरे को कुछ नहीं बोले।
हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं।
मैंने उनसे पूछा कि आप दोनों में से इश्क का इजहार सबसे पहले किसने किया?
प्यार का इजहार उन्होंने कभी नहीं किया। मैंने उनको एक बार कहा था कि तुम मुझसे इसलिए नहीं कह रहे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि तुम समझते हो कि कह देने से आदमी छोटा हो जाता है। मैंने उनको कहा नहीं, छोटा नहीं हो जाता। अपना इजहार करने के लिए उन्होंने लहरों के राजहंस के पहले सफ़े पे लिखा, उस एक को जिसे लगता है कि मन की बात कहने से आदमी छोटा हो जाता है। इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वो मुझे प्यार करते हैं।
जब अनीता ने मोहन राकेश से शादी करने की मंशा अपनी माँ से बताई तो उन्होंने उन्हें बुरी तरह से पीटा।
मेरी माँ ने तो मुझे दौरी से पीटा, कहने लगी वो तेरे से प्यार करते हैं, अरे वो तेरे के ऊपर तो थूकता भी नहीं है। फिर जब उन्होंने मम्मी से बात करी तो राकेश जी ने उस दिन साफ साफ बात कर दी कि देखिए मैं अनीता से प्यार करता हूँ। मम्मी ने मेरे ऊपर पहरा रखना शुरू कर दिया, मुझे बाहर आना जाना मना हो गया। राकेश जी ने कहा था एक दिन तुम आ जाना संडे को सुबह ट्यूटोरियल्स का कह के, एक वही कपड़े लाना जो तुमने पहने होंगे और एक अपने कुछ सर्टिफिकेट्स, और कुछ नहीं। वो दिन था, माँ ने कहा बारिश होने वाली है मत जाओ आज। मैंने कहा माँ आज ही तो जाना चाहिए, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं भीगना चाहती थी जैसे मल्लिका भीग गई थी, वो भी आषाढ़ का एक दिन था। मैं उन्हीं कपड़ों में सर्टिफिकेट्स लेके चली गई, फिर लौट के नहीं आई।
इस बीच अनीता का परिवार भी दिल्ली आ गया। अनीता ने चावड़ी बाजार के एक प्राइवेट कॉलेज में बीए में दाखिला लिया। राकेश रोज सुबह 6:45 पर टैक्सी से अनीता से मिलने उनके कॉलेज पहुंचते। राकेश उनसे शादी कर उन्हें बंबई ले जाना चाहते थे, तब शायद अनीता के बालिग होने में कुछ दिनों की देर थी। सवाल था कि कानून और परिवार की साजिशों से कैसे बचा जाए। राकेश के सबसे करीबी दोस्त कमलेश्वर अपनी आत्मकथा आधारशिलाएं में लिखते हैं।
राकेश चाहता तो सब कुछ था, पर वो घबराता बहुत था। आखिर ओम प्रकाश ने एक तरकीब निकाली, अनीता राकेश के साथ खुलेआम सफर कर सके इसके लिए उसने अखबारों में एक विज्ञापन दिया, एक प्रख्यात लेखक के लिए जरूरत है एक ऐसी महिला सेक्रेटरी की जो युवती हो, हिंदी और अंग्रेजी की अच्छी ज्ञाता हो, जो डिक्टेशन ले सके और भारत से बाहर लेखक के साथ सफर कर सके। पोस्ट बॉक्स नंबर इतने पर आवेदन आमंत्रित हैं। इस विज्ञापन को राकेश ने पर्स में रख लिया, अब सारी तैयारियां पूरी थीं। 8-10 दिन बाद अनीता को राकेश के साथ दिल्ली छोड़ देना था।
अनीता के मन में कहीं ये बात थी कि राकेश 2 शादियां कर चुके थे, उनके साथ उनकी निभ भी पाएगी या नहीं। मोहन राकेश ने अनीता का मन मजबूत करने की जिम्मेदारी मशहूर उपन्यासकार मन्नू भंडारी पर सौंपी। मन्नू भंडारी ने बीबीसी को बताया,
उनका कहना था कि मैं इस ढंग से बात कहूं कि अनीता स्वीकृति दे दे। अब मैं जब वहां गई तो मैं तो दंग, वो तो बहुत ही बच्ची सी, वो बहुत छोटी लड़की थी वो तो। अनीता तो मुझे पकड़ के एकदम, बताइए मनोज जी दो दो पत्नियां छोड़ी, क्या कारण था, क्यों छोड़ी? मैंने कहा दो ही कारण नहीं था, कभी भी तुमने राकेश जी के मुंह से पहली पत्नी की कभी कोई बुराई सुनी, दूसरी कद से तो साथ ही बहुत कम रहा, तो वो कभी किसी की बुराई नहीं करते थे, सिर्फ इन लोगों के व्यक्तित्व बहुत अलग थे जो साथ नहीं निभा। और भाई यही कारण था, व्यक्तित्व अलग थे, वो था वो लड़के तो बच्चों की तरह से एकदम, और तो कोई कारण नहीं था, कोई बड़ा कारण तो नहीं था। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, तो मैं कर लूँ शादी तो कोई वो तो नहीं होगा। मैंने कहा देखो शादी का मामला ऐसा होता है, ये तो अपनी अपनी इच्छा की बात होती है, तुम कर लो बहुत अच्छा है, नहीं करो तो जो भी करो तुम तुम्हारी इच्छा पे निर्भर करेगा।
जिस दिन इन दोनों को मुंबई जाना था उस दिन बारिश हो रही थी। माँ ने उन्हें घर से बाहर निकलने से मना किया, लेकिन अनीता अपनी किताबें और सारे सर्टिफिकेट्स लेकर एयरपोर्ट जाने के लिए निकली। आगे की कहानी कमलेश्वर की जुबानी।
तय ये हुआ कि अनीता को हौज काजी से मैं लाऊंगा। राकेश मुझे गोल ढक खाने पर इंतजार करता मिलेगा। अनीता पूड़ी वाली दुकान में अपनी किताबें पकड़े इंतजार कर रही थीं, सलवार कमीज और चप्पलें पहने जैसे वो कॉलेज जा रही हों। गोलडाक खाने पर दूसरी टैक्सी में बैठा राकेश हमारा इंतजार कर रहा था। उसके पर्स में वो विज्ञापन वाला कागज मौजूद था और जेब में एयर टिकट। अनीता शांत थी जबकि राकेश पसीना पसीना था और बार बार सिगरेट सुलगा रहा था। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो राकेश ने कहा अभी फ्लाइट में समय है, रेस्तरा में बैठना ठीक रहेगा। मुझे तब और भी मजा आया जब अनीता भी हंसी, जब हमने देखा कि राकेश हम दोनों से अलग होकर आगे आगे चल दिए जैसे हमें पहचानते ही ना हो। मुझे भी हंसी आई जब अनीता ने कहा यही आपका जिगरी दोस्त है जिसका जिगर इतना कमजोर है।
इस तरह अनीता का वैवाहिक जीवन शुरू हुआ। उनकी उम्र 21 साल की भी नहीं थी। बंबई उतरते ही मोहन राकेश अनीता को सन एंड सैंड होटल ले गए।
मैं बहुत डर गई थी, मैंने पर्दा खींचा बाहर देखने के लिए। मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठी थी, उल्टियों पे उल्टियों उल्टियों पे उल्टी, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। मैं जा के दरवाज़ा खोलूं तो वो कॉकपिट का खुलता था, मुझे दिखता था बाहर। पता नहीं कैसे जा रहा, मुझे पता नहीं हवाई जहाज कैसा होता है। जब हम होटल में गए तो मुझे इतना अजीब लग रहा था कि ये लोग कहेंगे ये पता नहीं कौन आई है इसके साथ, बाल उड़े हुए। मुझे लग रहा था ये लोग सोचेंगे पता नहीं कौन से खैर लेके आए हैं कहाँ से। जब हम ऊपर पहुंचे तो मैंने पर्दा खोल कर नीचे सन एंड सैंड में देखने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो यहाँ पर्दा खोलने पे कैद कर लेते हैं, पर्दा बंद कर दो। जब पहली बार मैंने इनके साथ अकेले कमरे में मैं गई थी तो उन्होंने चिटकने लगा दी, मुझे बड़ा डर लगा अब क्या होगा। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा देखो मुझे घर छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे कहने लगे तुम्हारा दिल करता है यहाँ से जाने का, सच बोलो। मैंने कहा नहीं। बम्बई तो वो मुझे लेके गए लेकिन वहाँ हमें कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी। हम ना अकेले मिल सकते थे, ना बात कर सकते थे, ना ही कोई हमारा रिश्ता बन सका। मुझसे बात तक नहीं करते, मुझे छुआ तक नहीं। मुझे बहुत दुख हुआ, शायद मैंने बहुत गलत फैसला लिया है। हमारा सेक्सुअल रिलेशन बहुत देर के बाद हुआ क्योंकि वो आदमी जो है वो अपने दोस्तों से घेरा रहता था।
किसी भी कमसिन लड़की के लिए मोहन राकेश जैसे जटिल शख्स के साथ सामंजस्य बैठाना आसान काम नहीं था। मोहन ने भी उनसे साफ साफ कहा था कि उनकी प्राथमिकताओं में वो तीसरे नंबर पर ही आती हैं।
वो कहते थे कि देखो अनीता, वैसे वो मुझे बहुत नाम से बुलाते थे, अन्तिन मिन तिन्ना है, मेरा असली नाम तिन्नी है। बोलने लगे देखो तिन, मैं आज तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूँ, पहले नंबर पे तो मेरा लेखन है, दूसरे नंबर पे मेरे दोस्त हैं, तीसरे नंबर पे तुम हो। और वैसे भी देखिए ये तीन का जो हिस्सा है ना, ये मैं सारी उम्र पीछा करता रहा। 3 अगस्त के मैं, 3 दिसंबर को वो गुजरे, 3 बच्चे उनके थे, 3 बच्चे मेरे। मैंने कहा ठीक है मैं तीसरे नंबर पे ही ठीक हूँ।
मोहन राकेश के सबसे नज़दीकी दोस्त थे कमलेश्वर। कई साल पहले वो BBC स्टूडियो आए थे और उन्होंने मुझसे अपने जिगरी दोस्त के बारे में बहुत सी बातें की थी।
हम लोग साथ साथ रहते थे 9 वर्ष, हम और मोहन राकेश एक ही घर में ऊपर नीचे, क्योंकि हम लोग दिन भर मस्ती में बातें करना, गप्पे लड़ाना, नई कहानी की बातें सोचना होता ये था कि हर वक्त जब भी कोई आया हम लोग कॉफी हाउस में बैठे होते थे। तो एक रोज किसी ने पूछा कि राकेश भाई आप का क्या दिनचर्या क्या रहती है, तो उन्होंने कहा कि बड़ा आसान है, हम रात को पहुंचते हैं कोई 11:30-12 बजे घर, तो उसके बाद 1-2 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर उठते हैं 11-12 बजे दिन को, सुबह की चाय आए पीते हुए 12:30-1 हो जाता है, फिर कहने लगे कि फिर क्या, फिर बस जरा सा नाश्ता किया, शेव किया, नहाए धोए, तो इसी में 4:30-5 बज जाते हैं। कहेंगे फिर, कहेंगे फिर कॉफी हाउस आ जाते हैं, तो कहेंगे तो आप लिखते कब है, उनका लिखना लिखते हम कल है।
अनीता राकेश इस समय 75 साल की है और दिल्ली में रहती है। आजकल वो अपनी किताब अंतिम सत्रें लिख रही हैं। मोहन राकेश के साथ बिताए गए एक एक क्षण को वो बहुत शिद्दत से याद करती हैं।
थी? देखिए, उनको सिगरेट पीने की बहुत बड़ी आदत थी, क्योंकि इनहेल वो नहीं करते थे। सिगरेट पीने की आदत उन्होंने मुझे भी डाली। रेखा, चमन, मदन, हम लोग सब छत पे बैठ के शराब और सिगरेट पिया करते थे। वो किसी की बदजुबानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। वो समझते थे कि वो सबसे ज़्यादा जानते हैं। किसी की बदजुबानी या किसी की बात वो नहीं सुनते थे। रेजिग्नेशन अपनी जेब में रख के घूमते थे कि किसी ने कोई बात की तो रिज़ाइन करके रख दूँगा। सारिका भी उन्होंने सिर्फ जैनियों की वजह से कही है, उसकी वजह से 11 महीने कर दी तो छोड़ दी। शांति प्रसाद जी ने पूछा, भैया 11 महीने तुमने सारिका चलाई, अब क्यों छोड़ दी? कहने लगे, शांति प्रसाद जी, एक एयर कंडीशनर खरीदना था मुझे, अब मैंने पैसा इतना तो बना लिया है कि मैं एयर कंडीशनर खरीद लूँ, अब मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। वो तो ये पन्ना लाल और इन लोगों को, इनकी फ्लूट वगैरह ये सब सुनते थे। पुराने LPs थे उनके पास, म्यूज़िक का तो उनको बहुत शौक था। और वैसे भी खयाम जैसे और ये सारे हमारे दोस्त थे, बम्बई जाते थे तो महफिलें होती थी, ये लोग घर में बैठ के गज़लें सुनते थे। वो कौन औरत थी जो बंजारन थी, रेशमा को सुना करते थे, वाह वाह किया करते थे।
अनीता के साथ रहते हुए मोहन राकेश को 6 साल हुए थे, तब उन्होंने उनसे कहा था, अब तू मेरा घर छोड़कर जाएगी या नहीं? 2 साल से ज्यादा मैं किसी औरत के साथ नहीं रहा। पहले मैंने सोचा था कि 2-3 साल बाद तुम चली जाओगी, पर अब 6-7 साल हो रहे हैं और तुम्हारे जाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। यार, तूने मेरा रिकॉर्ड खराब कर दिया। अनीता ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, लेकिन 3 साल बाद राकेश उन्हें छोड़कर चले गए हमेशा के लिए, सिर्फ 46 साल की उम्र में। सिर्फ 9 साल का साथ रहा इन दोनों का। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
खेल के मैदान में क्या हलचल है इन दिनों, बताने के लिए आदेश कुमार गुप्त मेरे सामने मौजूद हैं।
जी संदीप, आज न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को बे ओवल में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 47 रन से मात दी। बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 197 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वह 18.1 ओवर में 148 रन पर सिमट गई। बांग्लादेश के शब्बीर रहमान ने 48 और सौम्य सरकार ने 39 रन बनाए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने कोलिन मुनरो की 101 रनों की शतकीय पारी की मदद से 7 विकेट खोकर 195 रन बनाए। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैचों सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। इसी बीच ICC टेस्ट रैंकिंग में भारत जीत के रथ पर सवार है और वो 120 अंकों के साथ अभी भी नंबर 1 पर बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों टेस्ट सीरीज में 3-0 से हार का नुकसान भुगतना पड़ा और वह 5वें पायदान पर पहुंच गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 109 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका 102 अंकों के साथ तीसरे और इंग्लैंड 101 अंकों के साथ 4थे स्थान पर है। उधर अगर टेनिस की बात की जाए तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ब्रिटेन के एंडी मरे को मात देकर कतर ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में दूसरी वरीयता हासिल जोकोविच ने शीर्ष वरीयता हासिल एंडी मरे को 6-3, 5-7, 6-4 से मात दी।
और इसके साथ ही भारत में बजने वाले हैं रात के 8, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले विश्व समाचार एक बार फिर वात्सल्य राय से।
BBC समाचार। समाजवादी पार्टी में जारी तकरार के बीच आज मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में कहा कि प्रवासी भारतीयों के सपने सरकार के लिए संकल्प की तरह हैं। इसराइल की पुलिस के मुताबिक यरूशलम में एक व्यक्ति ने सैनिकों पर ट्रक चढ़ा दिया, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को लेकर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरेजा मे ने उन अनुमानों को खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका नेटो को लेकर सभी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं करेगा। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। अगला प्रसारण नमस्कार भारत सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।